ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सब लोग एकाग्रता से बोलिए, बस एक ही बार। प्रभु जी थोड़ा रुको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
राम
राम राम हरे हरे। अभी एक बार नेपाल के सभी भूकंपग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो चरित्र है बहुत ही प्रेरणादायक है। साउथ इंडिया में जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास्य करने के लिए रुके थे तो वेंकट भट्ट के घर में रुके थे, और वेंकट भट्ट का जो घर है वहाँ पर मुझे भी रुकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हमारी 2005 की यात्रा में उसी घर में जहाँ चैतन्य महाप्रभु 4 महीने रुके थे, वहाँ पर हम लोग 4 दिन रुके। तो वेंकट भट्ट जो थे वो श्री रंगनाथ जी के भक्त थे, यानी कि उनका जो भगवान के प्रति भाव था वो ऐश्वर्य भाव था, लक्ष्मी नारायण के भाव में वो रंगनाथ जी की सेवा करते थे। चैतन्य महाप्रभु माधुर्य भाव की अनुभव कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट के बीच में बहुत ऐसे क्या कहते हैं उसको, प्रेम भरे और कभी कभी मजाक भरे संवाद हुआ करते थे। जानबूझकर चैतन्य महाप्रभु उनको थोड़ा सा उनका मजाक उड़ाते थे, कैसे कैसे आपकी लक्ष्मी तो इतनी पतिव्रता है, लेकिन हमने तो सुना है कि वो भगवान की बंसुरी सुनकर लक्ष्मी देवी भगवान के चरण भी छोड़कर चले जाती है, यह कैसे हो सकता है। तो बहुत प्रेम भरा संवाद हो रहा। और चैतन्य महाप्रभु दिन भर रंगनाथ जी के मंदिर के प्रांगण में कीर्तन करते थे, दिन भर झूम झूम कर। पूरे श्रीरंगम के वासियों को पूरा आनंद दिया उन्होंने। और जैसे संध्या होती थी तो घर पे लौटते थे, और रात भर एक प्रबोधानंद जी, एक छोटे गोपाल जी, गोपाल पुत्र, और एक स्वयं वेंकट भट्ट, इन तीनों के साथ बैठकर रात भर कृष्ण कथा करते थे। तो कोई निद्रा का वर्णन नहीं आता है कि कभी सोए वो। लेकिन उनके घर में जो 4 महीने रुके वो हर रात वहाँ पर दिव्य उत्कट हृदयंगम ऐसे कृष्ण लीला का वर्णन हुआ महाप्रभु चैतन्य और वेंकट भट्ट के बीच में। तो छोटा बालक गोपाल जो था वो इनकी सेवा में था, तो साहजिक है ना, ये बात वास्तविक है, सहज है कि उनका इतना आसक्ति हो गया महाप्रभु जी के प्रति, रोज का संग, रोज की सेवा। तो चतुर्मास समाप्त तो हो गया तो चैतन्य महाप्रभु जाने लगे अगले अपने अंजाम पर। तो गोपाल जी ने कहा कि गोपाल जी कहे बोले कि नहीं, हम जाएंगे आपके साथ में, हम आपके बिना नहीं रह सकते। छोटे गोपाल जो थे वेंकट भट्ट के बालक वो इतने आसक्त हो गए थे महाप्रभु जी की सेवा से, तो वो उनके साथ जाना चाहते थे। तो उसमें महाप्रभु जी ने उनको आदेश दिया कि आपके माता पिता भी हैं दुनिया में, उनकी सेवा करना आपका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। उनकी जो सेवा है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको छोड़कर आप मेरे साथ नहीं आ सकते। आप तभी मेरे पास आ सकते हैं जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे, तो आपकी उनकी सेवा समाप्त होगी, फिर आप जहाँ पर मैं रहूँगा वहाँ पर आ सकते हो, वृंदावन आ सकते हो। तो गोपाल इतने प्रामाणिक और इतने नम्र भक्त थे, इतनी छोटी उम्र में भी उन्होंने अपनी जो इच्छा थी, अभी तो हमारे घर में बालक होते हैं 5 साल के 10 साल के, कितने हट्टी होते हैं वो, थोड़ी आप उनको फिलोसॉफिकल बात समझाएंगे तुरंत समझ जाएंगे, एकदम सरेंडर हो जाएंगे, ऐसा है क्या? कितना हमको मुठभेड़ करनी पड़ती है, दिमागी मुठभेड़। छोटा गोपाल तुरंत तुरंत मान गए और रह गए पीछे। छोटी छोटी उम्र, 5 साल की उम्र थी, बहुत छोटी उम्र, 5 ईयर्स ओल्ड, और तब तक घर पे रहे अपने श्रीरंगम के जब तक माता पिता रहे। मतलब वो बड़े हो गए, माता पिता बूढ़े हो गए, एक एक करके उनका देहांत हो गया। मतलब कम से कम लॉजिकली कितने साल होंगे, 30-40 साल तो हो गए ना निश्चित रूप से। 30-40 साल तक आप सोच सकते हैं, वो जो बीज प्रेम का उनके हृदय में बोया गया चैतन्य महाप्रभु का, उसको संभालते हुए, बनाए रखते हुए, उसको चिंतन विचार करते हुए, उसको बढ़ाते हुए, विरह भावना में उन्होंने इतने सारे साल बिताए। और बहुत साल के बाद जब माता पिता भगवत धाम पधारे तो फिर वो चले गए। उनको वृंदावन आने का बताया गया था, इसलिए वो वृंदावन चले गए। अभी अगर हम श्रीरंगम में हैं, हमको वृंदावन में जाना है, तो क्या करेंगे आप? तुरंत इंटरनेट खोलेंगे, देखेंगे कौन सा फ्लाइट जा रहा है, सबसे क्लोज कौन सा है, डायरेक्ट तो नहीं है, तो बॉम्बे जाके फिर दिल्ली जाएंगे, ऐसा प्लानिंग करते हैं। ये जो है वो पैदल गए, सीधे वृंदावन गए। कितने महीने लगे हुए उनको, और जब वृंदावन गए तो पता चला कि चैतन्य महाप्रभु पुरी में हैं, लेकिन पहुंचने का आदेश था वृंदावन के लिए, तो वृंदावन नहीं मिले, इसलिए मतलब तुरंत पुरी नहीं भागे, जहाँ बताया गया है वहीं गए और वहीं रहकर भजन करने लगे। ये दूसरी बात है। भक्त जो होता है ना, वो कभी भी अपने गुरु जी के आदेश पर इंटरप्रेट नहीं करता है कि इसका मतलब शायद ये हो सकता है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे तो उन्होंने बुलाया था तो मुझे उनको जाके मिलना चाहिए ना, जाने का आदेश तो वृंदावन का था, तो वहीं रह के विरह भावना में उनकी चैतन्य महाप्रभु विरह में भजन करने लगे। ऐसा वर्णन आता है कि वो विरह इतना उत्कट हो गया था, इतना उत्कट हो गया था कि वो विरह भावना से जल रहे थे जैसे। तो महाप्रभु जी को वो खबर मिली कि गोपाल बहुत विरह में जल रहे हैं, तो अपना एक वस्त्र और क्या क्या दिया उन्होंने, दो चीज, एक आसन दिया, आसन, अपना एक आसन और एक वस्त्र उनको भेज दिया थोड़े विरह को शांत करने के लिए। थोड़ा सा विरह शांत हो गया, लेकिन विरह शांत नहीं हुआ। फिर विरह वापस जब विरह उत्कट हो गया, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आए। उन्होंने कहा कि अभी आप नेपाल जाओ, गंडकी नदी में, वहां पर मेरा दर्शन आपको होगा। तो फिर वो पैदल वृंदावन से नेपाल गए। अभी कितना घंटे का फ्लाइट है वृंदावन से नेपाल का, दिल्ली नेपाल का? 2 घंटे का फ्लाइट, 2.5 आवर्स। और वृंदावन से दिल्ली भी जाना है आपको 150 किलोमीटर, तो कितना किलोमीटर चलोगे वो? और अभी हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि मैं जब 12 अप्रैल में नेपाल गया था, तो मैं वहाँ से कार से पोखरा, मतलब कार से फ्लाइट से पोखरा गया, पोखरा से मैं कार से बेनी गया, 70-80 किलोमीटर का पहाड़ी अंतर है वो, इट्स लाइक 20 किलोमीटर के आगे आप चला नहीं सकते गाड़ी, वो 4 घंटे का रोड जर्नी का अंतर है, 4 घंटा लगता है रोड से। और बेनी से आगे एक शालिग्राम क्षेत्र है, वो उससे भी बहुत आगे है, और कदम कदम पर 15-15 किलोमीटर का आपको गाड़ी बदलनी पड़ती है, नया टैक्स देना पड़ता है, नई टैक्सी करके नया टैक्स भर के अगले इलाके में जाना पड़ता है, फिर नई टैक्सी छोड़ के नई टैक्सी करके फिर टैक्स भर के जाना पड़ता है, ऐसे करते करते फिर शालिग्राम क्षेत्र आता है। तो वो वहाँ तक चले गए, और वहाँ उन्होंने स्नान किया गंडकी में। गंडकी तो बहुत बड़ी है, मतलब वो एकदम पहले भी आप स्नान कर सकते एकदम जमीन के लेवल पर, लेकिन वो शालिग्राम क्षेत्र जो है वो बहुत पहाड़ी इलाके में है और केवल वहीं शालिग्राम उत्पन्न होते हैं, ओनली इन दैट एरिया। वहाँ से जो कुछ गिरते हैं वो थोड़े आगे भी मिलते हैं, लेकिन जो उत्पन्न स्थान है उनका वही है वो। तो कहानी उसकी ऐसी छोटी सी है कि भगवान विष्णु ने वृंदा देवी का सतीत्व भंग किया, जालंधर की पत्नी के रूप में थी तभी, मूलतः उनकी भक्त थी वो गोलोक वृंदावन की, लेकिन शाप होकर जब वृंदा देवी राक्षस की पत्नी बनी, पतिव्रता धर्म उसका भगवान ने भंग किया, तो वृंदा देवी ने उनको शाप दिया कि आप पत्थर बन जाओ, और भगवान ने उनको शाप दिया कि आप पौधा बन जाओ, और पौधा बन के मैं आपके चरणों में रहूँगा। उसी समय उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि आप वज्र कीट बन जाओ, यू बिकम अ इंसेक्ट इन लाइक वज्र, वज्र को भी काट सकते हो ऐसे कीट कीटक बन जाओ, और मैं ये जो पत्थर बनकर गंडकी नदी के जमीन के मतलब क्या कहते हैं उसको तल में मैं जाऊंगा, तो उसको अंदर से आप डिज़ाइन बनाना मेरे अलग अलग रूपों का। इसलिए शालिग्राम शिला जो होती है बाहर से बहुत मुलायम होती है, क्या बोलते हैं, चिकनी होती है, बहुत सुंदर स्मूथ होती है, फिर अंदर से उसके चक्र या गणेश जी या नरसिंह भगवान या वराह भगवान या शेषशाही भगवान ऐसे अलग अलग रूपों के, ब्रह्मा शिव जी या आप बोलते जाओ, उस अनेक अनंत रूप होते हैं, वो सब अंदर से बनते हैं। जब ये लोग उसको तोड़ते हैं तो अंदर उसको आपको पता चलेगा कि ये कौन सी शिला है। कुछ ज्ञानी लोग होते हैं वो तो बाहर से ही पहचान लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तोड़ के ही पहचानते हैं उसको। तो वज्रकीट विश्वकर्मा को आदेश दिया और शालिग्राम शिला इस तरह से अद्भुत तरीके से एक ही नदी के तल के नीचे पैदा होने का लीला संपन्न हुआ। तो इतना दूर यात्रा करके गोपाल भट्ट जी वहाँ पहुँचे, और फिर वहाँ पर जब वो स्नान कर रहे थे, स्नान करके आचमन करके अर्घ्य अर्पण कर रहे थे, तो उनके कमंडलों में पहली बार 12 शिला प्रवेश किया, कुछ शिला प्रवेश किया। अभी देखो ये कितनी आश्चर्य की बात है, जब कोई पत्थर होता है ना वो तैरता है क्या पानी में कभी? एक ही पत्थर तैरा था मतलब अनेकों सारे रामलीला में सेतु बंद में, बाकी कोई पत्थर तैरे क्या कभी? कभी हमने सुना नहीं उसका। तो ये जो तल के पत्थर हैं वो ऊपर आकर तैर कर कमंडल में आ गए। तो कमंडल हम कहाँ डालते हैं? थोड़े नीचे डालते पानी के, ऊपर से निकलते हैं पानी। तो कुछ शिलाएँ आ गए तो उन्हें वापस कर दी जल में, फिर दोबारा जल ले लिया तो दोबारा शिला प्रवेश किया उसमें, और तीसरी बार जब किया तो 12 शिलाएं उसके अंदर प्रवेश की गई। तब आकाशवाणी हुई आकाश से, मैंने कहा था आपको कि मैं आपको मिलूंगा यहाँ पर, मैं दर्शन दूंगा, यही मेरा दर्शन है आपके लिए, इन शिलाओं को वृंदावन ले जाओ और मेरा ही स्वरूप मानकर उनकी सेवा करो, क्योंकि मेरा ही स्वरूप है स्वयं। तो गोपाल भट्ट जी फिर वहाँ से चल के वृंदावन आए। हम तो यकीन भी नहीं कर सकते कि हम इतना चल सकते हैं, इतना पहाड़ी इलाका है, एक्चुअल क्लाइंबिंग माउंटेन, बहुत गहराई में है वो, एकदम मुक्तिनाथ के पास में है शालिग्राम क्षेत्र। वहाँ से चल के लेकर वो शालिग्राम शिलाएं वृंदावन लेकर आए, श्रद्धा से उसकी सेवा किया उन्होंने, तो चंदन गंग जमुना जल तुलसी प्रेम से सेवा किया। और फिर एक व्यापारी आया और उसने सभी गोस्वामियों को अलंकार और वस्त्र दिए, जिन ठाकुर जीओं के विग्रह शरीर होता है उनको सब दे दिए, और इनके पास भी आए तो उन्होंने कहा मैं क्या करूँगा आपके आभूषण लेकर, मेरे ठाकुर जी को तो अंग ही नहीं है। तो नहीं नहीं मैंने तो लाया है, आपको लेना ही होगा, मैं सबको दिया आपको भी लेना होगा। तो ले लिया उन्होंने, फिर तब से उनके मन में वो इच्छाएँ जागृत होने लगे कि कितना अच्छा होता मेरे ठाकुर जी के भी अंग होते, वो इच्छा मन में पलने लगी। हाँ, और रोज चिंतन करते इसी बात पर कि कितना अच्छा होता मेरे ठाकुर जी को अंग होते। और फिर नरसिंह भगवान की जयंती आई, वैशाख शुद्ध चतुर्दशी, उस दिन सभी गोस्वामी सभी जितने संतगण होते हैं वो अपने अपने मंदिरों में भागवत जी खोलते हैं और नरसिंह भगवान का लीला का पठन करते हैं सब भक्तों के सामने। बड़ी लंबी लीला है सातवें स्कंद की, उसका वाचन करते हैं, चिंतन करते हैं, प्रवचन करते हैं। इन्होंने भी अपने मंदिर में भागवत जी का प्रवचन किया नरसिंह लीला के ऊपर, प्रहलाद चरित्र के ऊपर, नरसिंह भगवान के आविर्भाव के ऊपर। जब पूरी लीला समाप्त हुई तो उनके मन में ऐसा विचार है, अरे प्रहलाद जी के एक इशारे में ये ठाकुर जी तत्क्षण प्रकट हो गए। ऐसा भी नहीं कि लीला के बीच में बोल के रखा था कि हाँ खंभे में भी आ सकते हैं। हाँ जब ऐसे ही वार्तालाप हो रहा है तो उन्होंने कहा कि ऐसे दिखाई, इधर इसमें जाएंगे, इसमें आएंगे क्या? हाँ बोले इसमें भी आ सकते हैं। तो भागवत में भी वर्णन दिया, आचार्य भी बताते हैं कि जैसे ही प्रहलाद ने इशारा किया तो भगवान तुरंत उसके खंभे में ऑलरेडी प्रकट हो गए थे, एक्चुअली रेडी थे, रेडी एकदम। और सारे अवतार हम भगवान जब लेते हैं तो माँ और पिताजी चुनते हैं, पहले देश चुनते हैं, जगह चुनते हैं, सब समय चुनते हैं, लेकिन इसमें उनको मौका ही नहीं दिया प्रहलाद ने। यहाँ उंगली दिखाया तो उधर तुरंत खंभे को ही माँ बना दिया, उसमें प्रकट हो गए वो। तो ये बड़ा अद्भुत लीला है। जब अभी भी उसका वर्णन होता है तो भी अभी भी आश्चर्य होता है हर समय कि कैसे अपने भक्त ने एक इशारा किया, उसके ऊपर एक उंगली दिखाई, तुरंत ठाकुर जी इसमें से प्रकट हो गए। कितना भक्त पर प्रेम करते हैं भगवान। तो गोपाल भट्ट जी को चिंतन ये था उस रात को जब वो सो रहे थे कि अगर प्रहलाद जी के एक इशारे में वो खंभे में आ सकते हैं तो क्यों नहीं इस शालिग्राम शिला से भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, वाई नॉट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, हो सकता है। ये सोचकर उन्होंने सभी शिलाओं को शयन किया और वो कुबित सो गए। जब सुबह उठे भोर के समय देखा कि एक जो रुमाल था वो ऐसे ऊपर उठा हुआ था, 12 शिलाओं का ऊपर जो 12 रुमाल वस्त्र डाले थे एक ऐसा ऊपर उठा हुआ था। तुरंत आश्चर्य से होकर जमुना जी में भागे, स्नान किया, शुद्ध होकर आचमन किया और ठाकुर जी का जब उन्होंने वस्त्र उठाया तो देखा कि दामोदर नाम की शिला में से एक पूरा विग्रह जो है, परिपूर्ण विग्रह उनके सामने के अंग से प्रकट हुआ था। जहाँ तक मुझे पता है शालिग्राम शिला अभी भी वैसे ही है और उसके आगे से ये विग्रह निकला हुआ है दामोदर शिला से। और मुझे दामोदर शिला का ऐसा एक महत्व है कि दामोदर शिला के ऊपर एक वाइट पट्टा होता है, वो दामोदर शिला की एक पहचान है। कभी फेंट होता है, कभी थोड़ा गहरा होता है, लेकिन वो उसकी पहचान है। और ऐसे भी कहते हैं कि सभी दामोदर शिलाओं के ऊपर वो इतना गहरा पट्टा नहीं होता है, और कुछ अंग होते हैं इसलिए से वो पहचानते हैं। लेकिन जिस दामोदर शिला के ऊपर अगर आपको वो उस पट्टे का दर्शन होता है और आप उसका दर्शन करते हो तो आपको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा उसका महात्म्य है। और वो लीला पत्री प्रभु के पास में है जो वाड़ा में लेकर आए थे, वो शिला जिसके अंदर पूरा एक पट्टा है ऐसा पूरा, वो माता ने बड़े प्रेम से बांधा हुआ जो श्रृंखला है, रज्जू है, वो उसका चिन्ह है उसके ऊपर। तो और वो जो उस शालिग्राम का अभिषेक किया हुआ जल प्राप्त करता है वो भी दोबारा जन्म ले लेता है, ऐसे ही उसका महत्व है। तो वैसे शिला के सामने से ये पूरा विग्रह प्रकट हुआ और इतने सुंदर और महीन उसके अंग थे, सो फाइनली फॉर्म्ड। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सभी लोगों को उन्होंने बुलाया कि क्योंकि वो सबसे जूनियर थे ना, उम्र से सबसे छोटे थे, एक में दक्षिणात्य थे और उम्र से भी सबसे छोटे थे गोसाइयों से। सब बड़े गोसाइयों को उन्होंने बुलाया, सब आए भाग भाग के चमत्कार देखने के लिए। तो रूप सनातन सभी लोगों ने देखा तो रूप गोस्वामी ने कहा कि इनके चरण कमल तो मदन मोहन जी की तरह है, इनका वक्षस्थल गोविंद जी की तरह है, इनका मुख कमल गोपीनाथ की तरह है। तो ब्रज के तीन प्रमुख विग्रह जो है उनका जो विशेषताएँ हैं वो तीनों विशेषताएँ इस मूर्ति के अंदर प्रकट हो गई है। तो उन्होंने उनका नामकरण किया रूप गोस्वामी ने, राधा रमण देव। तो राधा रमण देव भगवान की, तो ऐसे सुंदर राधा रमण जी के विग्रह वृंदावन में वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए। अगले दिन आज भी वृंदावन में उनका उत्सव मनाया जाता है, बहुत सुंदर। और वो जो राधा रमण जी के विग्रह हैं उनको ऐसा मानते हैं कि वो भी भक्तों की कोई भी प्रामाणिक इच्छा को पूरी करते हैं, जैसे गोपाल भट्ट की इच्छा पूरी की, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी की इच्छा पूरी, वैसे जैसे उन्होंने जिस भाव से गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा पूर्ण की वैसे वो सभी भक्तों की इच्छा भी पूर्ण करते। तो ये जानते थे हमारे महाराज जी, इसलिए जब उनको वीजा का प्रॉब्लम हो गया, वो उनको अरेस्ट करने का समय आया तो वो 5 बजे की मंगला में राधा रमन जी के मंदिर गए। उन्होंने कहा कि अभी मुझे वृंदावन छोड़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल अगर कायदे से देखते हैं तो मुझे अभी वृंदावन आने का चांस नहीं है। जिस प्रकार से मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया है, ओवरड्यू हो गया है, तो अभी मुझे जब पकड़ेंगे और देश के बाहर करेंगे तो मैं ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगा और दोबारा मुझे इस देश में प्रवेश, वृंदावन तो दूर की बात रही, भारत के किसी भी प्रदेश में मुझे प्रवेश नहीं मिलेगा। अभी आप ही के हाथ में, आप भी कुछ चमत्कार कर सकते हैं, जो भी आपकी लीला है आप दिखा सकते हैं, मुझे रखना है तो रख सकते हैं। मैं आपके सामने ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे आप रखिए। तो वहाँ से बाहर निकले और वहाँ से जा रहे थे राधा वल्लभ जी के मंदिर में हर रोज की तरह, जहाँ मंगला आरती 6 बजे होती है, और एक बीच में रास्ता है, अंधेरा भरोसा गली है, तो सेवा कुंज के रास्ते से गुजरती है। वहाँ पर गए तो उधर उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ा अंधेरे में, लेकिन ऐसा लगा कि कोई कुत्ता उनके पाँव के जो निचला हिस्सा है वहाँ पर काट रहा है ज़ोर से, एकदम बहुत भयंकर। उसके दांत जो है वो अंदर घुसते हुए उनको अनुभूति हुई, बहुत ज़ोरदार। और फिर कुत्ते के थोड़े भौंकने की आवाज़ भी आई और अंधेरे में कुछ पता नहीं चला कौन था, लेकिन अंदाज था कि कुत्ता होगा। तो वैसे ही दर्द भरा पाँव लेकर वो चलते रहे और सीधे बहुत देर तक चलते रहे और राधा वल्लभ जी के मंदिर गए। और वहाँ पर राधा वल्लभ जी के जो गोसाई हैं, राधेश लाल जी महाराज, टिकैत अधिकारी गुरुदेव, उन्होंने देखा इनके पैर से खून की लकीर भी आ रही है पीछे पीछे। तो ये क्या हो गया? तब देखा तो पूरा खून बह रहा है पाँव से। तो उन्होंने कहा ये तो पूछा कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने थोड़ा जो वर्णन किया उससे लगा कि कुत्ता काटा है। तो उन्होंने कहा कि रेबीज हो सकता है आपको। और उस ज़माने में हमारे बचपन में पता है ना हम लोग कुत्ते से डरते क्यों थे, क्योंकि 14 इंजेक्शन पेट में लेने पड़ते हैं, है ना, चमड़ी को ऐसे पकड़ के। वो एक भयंकर बचपन का भय था हमारे मन में, 14 इंजेक्शन, कुत्ता मतलब इज इक्वल टू 14 इंजेक्शन, अल्टरनेट डे एवरी डे, आई डोंट नो फुल शेड्यूल एवरी डे। और वो भयंकर पागल कुत्ता जो हमने कई बार देखा था, वैसे पागल होने की भय भी था कि अगर वो रेबीज होता है तो वैसा भी हो सकता है हमको। तो उधर गुसाई ने कहा कि जो उनके दोस्त थे वो, उन्होंने कहा कि 14 इंजेक्शन तो लेना पड़ेगा, तो आप मर जाएंगे, तो 14 इंजेक्शन लेना है तो फिर वो जो वृंदावन का बाज़ार है गोपीनाथ बाज़ार, उसके बाद रंगनाथ जी का मंदिर है, उसके बाद गोविंद जी का मंदिर है, उसके सामने रंगनाथ जी का मंदिर है, उसके राइट में जाएंगे तो फिर पब्लिक म्यूनसिपालिटी वगैरह का इलाका शुरू होता है, रघुनाथ आश्रम वगैरह है वहाँ पर, उधर गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी है, PHC ऑथोराइज्ड। और वो रेबीज़ का इंजेक्शन अभी भी गवर्नमेंट के इधर ही मिलता है, वो सब पब्लिक में नहीं मिलता है। अभी तो बहुत जगह रबीपुर वगैरह हो गया है, लेकिन उस समय रेबीज़ का इंजेक्शन वो गवर्नमेंट में ही मिलता था। तो वहाँ जाना मतलब पुलिस चौकी को लांग के जाना, मतलब पुलिस तो आपके पीछे है ही, तो अरेस्ट हुए बिना आपका इलाज नहीं हो सकता है, आपको अरेस्ट तो होना ही पड़ेगा। तो फिर डॉक्टर ने उनको बताया कि सर्टिफिकेट दिया कि इसको 14 इंजेक्शन की ज़रूरत है तो ये मर जाएगा, तो 14 दिन रहने का इंतजाम किया उसका। वो फिर उसके आगे बहुत लंबी कहानी है, इसके वजह से वो फिर गृह मंत्रालय तक गए और गृह मंत्री को भी मिले उस समय के, और हर एक जगह पर ना 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 करते हुए बोले इतना वीज़ा उनका ओवरड्यू हो गया है कि इसको किसी भी तरह पर वैलिड नहीं कर सकते, इतना लंबा समय इनको देश के बाहर ही जाना है, इम्पॉसिबल है। लेकिन किसी भी तरह से अगर जिस दिन वीज़ा एक्सपायर हुआ है कई महीनों के पहले, उस दिन से आज तक अगर वो वीज़ा एक्सटेंड करके दिखाया गया कि भाई वीज़ा एक्सटेंड किया, तो फिर वो वैलिड हो जाता है, फिर वो दोबारा भी कंट्री में आ सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए सभी अधिकारियों ने ना बोला था, जितने अधिकारी ऊपर ऊपर जाते रहे, एवरीबॉडी सेड नो 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 नो। फिर लास्ट अथॉरिटी है गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उसने भी उसको मना कर दिया कि नहीं हो सकता है। फिर उनके सामने महाराज जी को प्रस्तुत किया गया, तो महाराज जी की नज़र और उनकी नज़र जब मिली तब गृह मंत्री को पता नहीं क्या लगा, उसने कहा कि कर दो, उनका स्टैम्प मार दो उनके ऊपर। तो गृह मंत्री के एक स्टैम्प की वजह से उस दिन से जब वीज़ा ख़त्म हुआ था उसके कई महीनों तक और उस डेट तक वीज़ा वैलिड किया गया, जायज़ किया गया उसको, और फिर उनको देश के बाहर फिर वापस देश में आए एक बार। तो ये चमत्कार तो कौन कर सकता है, राधारमण जी कर सकते हैं। अगर उनको वो कुत्ता नहीं काटा होता तो आज वो भारत में नहीं होते। तो हमको भी कभी कभी लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, इतना कष्ट क्यों हुआ, लेकिन उसमें वो सब अच्छाई छुपी हुई थी। जो प्रार्थना किया था उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं ना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, भगवान से बोलते हैं जैसे डू वट एवर यू वॉन्ट माई लॉर्ड बट टेक मी बैक टू गॉड इट, डू वट एवर इट टेक्स, यू नो, कुछ भी लगे। लेकिन जब भगवान एक्चुअली आपका रास्ता बनाना शुरू करते हैं तो आप बोल रहे हैं वाई मी ओनली, क्यों मुझे ही पकड़ रहे हो आप, मैंने ऐसा क्या किया है, जब मैं कितना कष्ट क्यों दे रहे हो। तो हमारी प्रार्थना और हमारे जीवन में आने वाली सच्चाई, इसके अंदर कनेक्शन हमको समझना चाहिए कि इसके अंदर कनेक्शन है। भगवान आपकी प्रार्थना गंभीरता से सुनते हैं। हम लोग शायद ऐसे डायलॉग के रूप में मार सकते हैं प्रार्थना एक, लेकिन भगवान उसको गंभीरता से लेते हैं। इसलिए बी केयरफुल एंड बी थॉटफुल एंड बी मेडिटेटिव बिफोर यू ऑफर एनी प्रेयर टू द लॉर्ड, क्योंकि हम अपनी प्रार्थना जितनी गंभीरता से नहीं लेते उसके कई गुना गंभीरता से प्रार्थना हमारी भगवान लेते हैं, और वो अपने भक्त का हमेशा हित चाहते हैं। इसलिए आपने कभी भी गलती से स्पिरिचुअल प्रार्थना की ना तो तुरंत पकड़ लेते हैं उसको। शायद आप बोलेंगे पैसा चाहिए मुझे, अच्छी बीवी चाहिए वगैरह वगैरह, तो मे बी ही विल नॉट टेक इट सो सीरियसली। लेकिन स्पिरिचुअल प्रार्थना करेंगे तो वो आप गंभीरता से करेंगे नहीं करेंगे, सोच समझ के किया है कि नहीं किया है, वो तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। तो इसलिए ये राधा रमन जी का जो विग्रह है वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक तो उसमें जो प्रमुख तीन विग्रह हैं गौड़ीय वैष्णवों के, उनका दर्शन उसके अंदर है। दूसरा ये है कि उनकी जो पूजा पद्धति है वो प्रभुपाद जी के कहने के अनुसार बहुत परफेक्ट है, परिपूर्ण है। वो कहते थे अगर आपको विग्रह की पूजा पद्धति सीखनी है तो राधा रमन जी के मंदिर जाओ। वो राधा रमन जी के मंदिर में आज भी वो धुनी है, जो अभी मैं भूल गया उसको, उसका मैं अभी कथा सुना था कि वो धुनी जो है वो कहते हैं कि प्रहलाद महाराज के समय की धुनी है वो। धुनी मतलब अग्नि, धुनी मतलब निखारा कि वो ज्वाला, वो कुछ कनेक्शन में भी भूल गया। प्रहलाद महाराज के समय की जो धुनी है वो गोपाल बड्डी जी के पास में आ गई और वो अभी भी आज भी जल रही है उस मंदिर में पीछे के हिस्से में, और उसका जो जो काजल निकलता है ना, काजड़ी जो काला निकलता है सूट, उसी का तिलक राधा रमन जी के गोसाई करते हैं। एक सीधी लाइन और पीछे गोल, ऐसा वो जो तिलक है उनका वो उस धुनी से करते हैं, वो जो गोपाल पट्टे जी ने उसको बनाए रखा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्ति विनोद जी ठाकुर महाराज राधा रमन जी के मंदिर पे आते थे, तब जो वहां के गोसाई थे वो उनके अच्छे मित्र थे, और वो फिर भक्ति सिद्धांत जी के भी मित्र बने, क्योंकि वो पिता पुत्र साथ में कभी जाते थे और उनके यहाँ रुकते थे राधा रमन जी के गोसाई के घर में। तो उनके पास एक डायरी है, उस डायरी में आज भी वो दिखाते हैं कि किस तारीख को 300 साल पहले भक्ति विनोद जी आए थे अपने छोटे पुत्र को, मतलब जवान पुत्र को लेकर आए थे। क्या नाम था उनका? विमल प्रसाद, विमला प्रसाद, बाद में भक्ति सिद्धांत जी। फिर कुछ समय बाद भक्ति सिद्धांत जी जब ही बुजुर्ग हुए तो वो उनके घर में रुकने को आए थे, और लाला बाबू के मंदिर में उनका प्रवचन था। लाला बाबू जी का मंदिर जो है बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही सुंदर और रेखीय मंदिर है, बहुत सुंदर। आज भी आप कभी जाएंगे तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, पत्थर में बनाया गया है, उसका भी बहुत ही पुराना और सुंदर इतिहास है उसका, कैसे बनाया गया उसका। तो वो मंदिर में भक्ति सिद्धांत जी महाराज जी का प्रवचन था, और इतनी जनता इकट्ठा हुई थी, इतनी जनता इकट्ठा हुई थी कि जब प्रवचन समाप्त हुआ ना तो ऐसी उधर क्या कहते हैं उसको, स्टैम्पेड हो गया, पूरा मुठभेड़ हो गई लोगों की। क्यों? वो सब लोग भक्ति सिद्धांत जी के चरण छूना चाहते थे, दे वॉन्टेड टू टच हिज फीट। तो इतना भगदड़ मच गई वहाँ पर कि पुलिस आए, और पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन लोगों लोग इतने भावना में थे, उनको उनका चरण छूना ही था, और पुलिस उसमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई उनको रोकने में, उनके स्पिरिचुअल जो उमंग थी उसको रोकने में वो यशस्वी नहीं हुए। तो फिर पुलिस से जाकर ठाकुर भक्त सच्चन जी को विनती किया कि अभी आपको आपके चरण ऊपर करने ही होंगे और स्पर्श करने को देना ही होगा, नहीं तो ये भीड़ यहाँ से हटने वाली नहीं है और हम भी कुछ नहीं कर सकते उसके। तो बकायदा टेबल रखा गया, उनके चरण ऐसे ऊपर किए गए उसके ऊपर, और सब लोग ने बड़े प्रेम से उनका दर्शन किया, फिर सब लोग चले गए। ये पूरा प्रसंग जो है इसका वर्णन उनकी डायरी में है। हाँ, उसके बाद में जो उसके दूसरे उनके पुत्र गोसाई थे वो प्रभुपाद जी के मित्र बने और प्रभुपाद जी भी उनके घर में जाकर रहते थे और उनका भी डायरी में मेंशन है कि प्रभुपाद जी कभी कभी उनके घर पे आए थे। वो जो थे वो हमारे आज के पद्मनाभ गोस्वामी के पिताजी थे जो प्रभुपाद जी के मित्र थे, और उनके जो दादा थे पद्मनाभ जी के वो भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद जी के मित्र थे। ऐसा ये सुंदर इतिहास है। तो राधा रमन जी का एक्चुअली उगम का कनेक्शन जो है वो नेपाल से है, गंडकी नदी से है, काली गंडकी कहते हैं वहाँ पर, और शालिग्राम क्षेत्र में उनका उगम जो मूल 12 शिलाएं वहाँ प्राप्त हुई थी। और गंडकी और सेती ये दो बहनें थी नदियाँ, और वो साथ साथ में बहती थी। तो एक दिन पता नहीं रात का समय था तो व्यक्ति रूप होकर सेती जो है वो चुपचाप उठकर चली गई, बिना आवाज़ किए चली गई वहाँ से। तो सुबह जब गंडकी जगी, देखा तो सेती बहन मेरी नहीं है, तो वो जोर जोर से पुकारते हुए निकली, सेती तुम कहाँ हो, सेती तुम कहाँ हो, लेकिन नहीं मिली वो। ये क्या कहते हैं उसको, लोक वदंती बोलते हैं उसको, लोक वदंती यानी कि ओरल ट्रेडिशन। तो लोक वदंती का कहते हैं कि इसलिए गंडकी नदी जहाँ जहाँ बह रही है वो जोर से आवाज़ आता है, गूंजती उसकी आवाज़, और सेती जहाँ जहाँ जाती है उसकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। ये मैंने जाके स्वयं दर्शन किया उधर। सेती जहाँ जाती है एकदम शांत इलाका है, पानी की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, पानी बह रहा है सेती का, और गंडकी जहाँ जहाँ जा रही है बहुत जोर से आवाज़ करती करती जा रही है। कहते हैं कि वो सेती को पुकार रही है, कहाँ हो सेती, कहाँ हो। ऐसा ये पवित्र जो है नेपाल का क्षेत्र है, भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो गोपाल भट्ट जी की ये कहानी में मुझे मैं विचार कर रहा था कि ये संस्कार कितने अच्छे थे वेंकट भट्ट जी के, उनके पत्नी के, जिसकी वजह से बालक को इतने से उम्र से भगवान का अट्रैक्शन था, महाप्रभु चैतन्य का जो आकर्षण पैदा हुआ। ये बालक के हृदय में जब भगवान के प्रति आकर्षण होता है, ये माता पिता का सक्सेस है। माता पिता अगर गृहस्थ आश्रम में अगर यशस्वी हैं तो उनका यश आप बालक के चेतना में देख सकते हो। बालक की जो चेतना है उसको देखकर आप माता पिता का गृहस्थ आश्रम कितना यशस्वी है उसको परख सकते हो। तो इतना छोटा सा बालक पहले से वो भगवान भावना भावित था, तो जैसे भगवान दूसरा रूप लेकर घर पर आए तो उसे पूर्णता आसक्त हो गए। और इतना महीन उनका चेतना था कि जैसे ही महाप्रभु ने कहा कि आपको नहीं आना है तुरंत मान गए वो। ऐसा नहीं कि रोए, हाथ पांव झाड़ दिया, ज़मीन पे लेट गए, हाँ नो शोर मचाया, परेशान कर दिया माता पिता को, जाना ही है मुझे, ऐसा नहीं। तो हम सबको अपने गृहस्थ आश्रम में देखना ही है कि हमारे बालक को हम श्रेष्ठ चेतना दे सकें, और बालक को श्रेष्ठ चेतना अगर देना है तो बिना उदाहरण के नहीं दे सकते हैं। बालक को हम प्रवचन नहीं दे सकते हैं। वैसे बालक विरला होते हैं बहुत, जो प्रवचन सुनते हैं और खास करके माता पिता का सुनते हैं, ये तो बहुत ही दुर्लभ बात है। लेकिन हरे कृष्ण, आजकल का जो वातावरण है वो प्रवचन कम वाद विवाद ज़्यादा माता पिता के बीच में और बालक के बीच में। लेकिन ये बात ज़रूर है कि माता पिता का जी जो चेतना है उसका डायरेक्ट परिणाम बालक की चेतना पे होता है। हम लोग कई बार बोलते हैं भाई बात से, अरे पता नहीं ये कहाँ सीख के आया, हम तो दोनों ऐसे नहीं हैं। ज़रूर आजकल के बच्चों के साथ खेलता होगा, इधर स्कूल में जाता है इधर उधर, जैसे उसको कभी होता ना स्केबीज, वो चर्म का रोग होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे घर में तो किसी को नहीं है, वो स्कूल से ही लाया होगा। अगर बालक के बालों में जू हो गया तो बोलते हैं हाँ स्कूल से ही लाया होगा। वैसे ही बालक ने गलत काम किया तो क्या बोलते हैं, ये सब स्कूल से सीख के आया है। ये सब लोग आजकल जो है ना स्कूल में सब गलत गलत सीख के आते हैं। लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे घर में हमारे अंदर जो चेतना है उसका सर्वाधिक परिणाम बालक के चेतना पे होता है, क्योंकि वो बेस है आपका। वहाँ पर से जो खुराक मिलती है वो सबसे पावरफुल होती है, खास करके चेतना की पूरा खुराक जो है। इसलिए नम्र माता पिता अगर होंगे कोई तो वो बालक का जो व्यक्तिमत्व है, जो चरित्र है, उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद स्वीकार कर लेते हैं। वी आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल। इसका आज जो भी चेतना है, जो भी भावना है, गलत अच्छा जो भी है, उसके पूरे जिम्मेदार हमें हैं, ये हमको समझना चाहिए। इसलिए बालक के अंदर अगर दिव्य कृष्ण भावना अगर पैदा करनी है तो हमें सबसे पहले हमारी चेतना के ऊपर कार्य करना चाहिए। हमारी साधना और विजिबल साधना नंबर वन बालक के सामने, और हमारा व्यवहार जो हम एक दूसरे के प्रति करते हैं, पति पत्नी के एक दूसरे के प्रति, और ख़ास करके पति पत्नी अपने माता पिता के प्रति जो भी व्यवहार करते हैं, वो सारे व्यवहारों को बालक बहुत नज़दीकी से देखते रहता है। हमारे रघुनाथ प्रभु थे हमारे हॉस्पिटल में, उनके घर में हम लोग एक बार भोजन करने गए थे। तो वो भोजन जब कर रहे थे, बात कर रहे थे, चल रहा था, तो अचानक उनको अपने पिता माता जी का अमृतसर से फ़ोन आया। तो फ़ोन लेने गए और बहुत देर अपनी माता से फ़ोन से बात करते रहे, और जब बात करते रहे तो अचानक रोने लगे बात करते करते करते, और बहुत देर रोते 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 बात करते रहे। फिर फ़ोन समाप्त हो गया, फिर आंखें पहुँची, अश्रू पहुँचे, फिर वापस आया हमारे बीच में। तो हमने कहा कि क्या हुआ प्रभु जी? बोले नहीं, जब भी माता का फोन आता है हमारा ऐसा ही होता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं मेरी माता से फ़ोन पे बात करते हुए रोते हुए अगर मेरे बच्चे मुझे देखते हैं तो आगे जाकर जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरा फ़ोन आएगा तभी वो भी रोएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि मेरे माता पिता अपने माता पिता के ऊपर कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि वही उनके सामने आदर्श हो गया ना। अगर वो फ़ोन पे सुनते हैं कि ये माँ को डांट रहे हैं, माँ उनको डांट रही है, कुछ गाली गलौज हो रहा है, फिर से फ़ोन मत करना कभी, वापस कभी आना है मेरे घर पे आना नहीं, ये अगर सुनते तो उनको लगता होता कि ऐसे माता पिता से बात करनी चाहिए। या माता पिता को वो देखते हैं कि पिताजी ने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है तो उनको लगेगा कि यही सही है, वॉट एवर माई फादर डिड वॉज द बेस्ट, तो वो भी उनको वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी चेतना और हमारा व्यवहार, हमारी चेतना तो दिखती नहीं है, व्यवहार तुरंत दिखाई पड़ता है, तो हमारा व्यवहार हमारे छोटे छोटे बालक क्यों ना हो बहुत गौर से देखते रहते हैं, और उसी से सारी शिक्षा प्राप्त करते हैं, सारे नतीजे ज़िंदगी के, सारे उनके जो रियलाइजेशंस हैं वो उसी से लेते हों, और वो छोटी सी उम्र से भी ले सकते हैं, क्योंकि वो जो देखते हैं वो देख के जो सीखते हैं वो सुन के नहीं सीख सकते हैं जितना वो देख के सीखते हैं, आपका उदाहरण देखकर, आपका व्यवहार देखकर। तो इसलिए जब भी हम कोई बालक को देखते हैं कि वो बहुत सुंदरता से भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, जब कोई बालक बहुत सुंदरता से ठाकुर जी के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, बहुत सुंदरता से भक्तों की सेवा कर रहे हैं, जो भक्त लोग घर में आते हैं उनको जल दे रहे हैं, उनको भजन भोजन दे रहे हैं, उनको परोस रहे हैं, उनसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे माता पिता ने बहुत सारा उदाहरण खड़ा किया है, उसके परिणाम स्वरूप बालक ने उसको सार के रूप में स्वीकार किया है। जैसे हमारे गिरिराज प्रभु को गिरिधारी ने एक बार पूछा, क्या पापा आप भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हो क्या, है ना प्रभु जी? तो यू कैन डू एनीथिंग फॉर डिवोटीज? बोला हाँ, आई विल डू एनीथिंग फॉर डिवोटीज। एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, एनीथिंग एल्स इज व्हाट इज एनीथिंग। सो बालक के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था वो, कि कैन माई फादर डू एनीथिंग फॉर डिवोटीज। वी वर वेरी स्मॉल दैट टाइम, लेकिन एक बहुत बड़ा जो है ना क्या कहते हैं उसको, वैल्यू, जीवन मूल्य उस बालक ने उस समय अपने हृदय में ले लिया, छोटे से अपने कोमल हृदय में ऐसा गंभीर प्रश्न पूछकर उसका जीवन मूल्य जो है उसने अपने हृदय में स्वीकार कर लिया। और ये ऐसे कीमती जीवन मूल्य अपने बालक को देना हमारा परम कर्तव्य है। केवल खाना पीना खिला के स्कूल में भेज के ग्रेजुएट कर दिया, उसको बड़ा कर दिया, तो हमको लगा हमारा कर्तव्य हो गया। वो तो कुत्ता बिल्ली भी करते हैं ना, वो भी अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं, जवान करके छोड़ देते हैं। लेकिन जीवन मूल्य जो है वो बालक को देना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो जो है वो हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। और जब हम वो करते हैं, हमारा गृहस्थ जीवन उसमें सफल हो जाता है, पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे जो मौके हैं वो हमारे जीवन में हमको कभी छोड़ने नहीं चाहिए। और हमारा व्यवहार जितना कृष्ण भावना भावित है, जितना आदर्श है, उतने हमारे बच्चे जो है हमारी चेतना को स्वीकार करते करते जीवन को परिपूर्ण करते जाएंगे। और एक बालक जब कृष्ण भावना भावित होता है, उसको देखकर माता पिता को इतना दिव्य आनंद होता है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। जब कोई माता पिता अपने बालक को भक्त बनते हुए, वैष्णव बनते हुए, वैष्णव सेवक बनते हुए देखता है, मेरे ख्याल से उससे ऊपर आनंद कोई माता पिता को नहीं हो सकता है। खुद के जीवन में पति पत्नी के संबंधों के बीच में, भावनिक संबंधों के बीच में भी इतना आनंद नहीं होता जितना हम अपने बालक को वैष्णव सेवक और वैष्णव बनते हुए जब देखते हैं, तो उससे बड़ा कोई आनंद नहीं होता है। जैसे हमारे अभी सुभद्रा माता जी हैं, उनका बलदेव प्रभु जी हैं, उनका मुझे मेल आया था आज। हाँ, वो अभी 15 मई को साउथ अफ्रीका के टूर, वेस्ट अफ्रीका के टूर में जा रहे हैं एक महीने के लिए। तो मीरा रोड के भक्त हैं वो, मीरा रोड का प्रोडक्ट है, मीरा रोड का फल है, हमारे लिए भी वो गर्व की बात है ना। तो जब भी शायद वो ब्रह्मचारी जब बने थे, तो शायद मन में बहुत दुख भी हुआ, अरे अपना बालक एक ही लड़का था, वो ब्रह्मचारी बन गया। कुछ देर बाद में वो सब कुछ ठीक हो गया मन में। अभी जब आप देख रहे हो कि आपका बालक इतना सुंदर प्रचार कर रहा है, पुस्तक वितरण में इतना नेतृत्व ले रहा है, मंदिर में सम्माननीय ब्रह्मचारी के रूप में वो अभी प्रस्थापित है, फिर उनको क्या क्या देश का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, वेस्ट अफ्रीका में सब देश से ऑफिशियल आमंत्रण है उनको, हमारे देश में आओ, हमारे देश में आओ। और एक टोगो नाम का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस है, स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस, उसको भी उनको आमंत्रण है, सब लीडर्स वहाँ पर आएंगे, उसमें भी इनको निमंत्रण है। तो जब हम अपने बालक को एक प्रामाणिक और ऑनेस्ट प्रामाणिक भक्त बनते हुए देखते हैं, तो एक माता पिता जो स्वयं भक्त हैं उनके लिए कितनी आनंद की बात है, कितनी गर्व की और कितनी आनंद की बात है। अगर हम भी नहीं जाएंगे भगवत धाम, तो बालक के भक्त होने के नाते हम पहुंच जाएंगे उनके पीछे पीछे। प्रभुपाद जी भी यही कहते थे कि एक भी अगर मेरा शिष्य प्योर डिवोटी बना ना, तो मेरा मिशन सक्सेसफुल है, वो मुझे भगवत धाम ले जाएगा। ये स्वयं नम्रता से प्रभुपाद जी बताते थे, सो इम्पोर्टेंट। तो हमारे बालकों को कभी भी हमको उनका संगोपन, उनको कृष्ण भावना देने का जो कार्य है, कभी भी उसको दुय्यम नहीं मानना चाहिए। इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, मेरे मंदिर की सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मेरा ये जो कार्य है बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा मिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार विवाह होने के बाद में बालकों को कृष्ण भावना देने का जो कार्य है, उससे कोई भी दूसरा कार्य प्रायोरिटी नहीं ले सकता है। बाकी महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं, वो महत्वपूर्ण अपनी जगह पर है, लेकिन वो कभी भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। ये हमारा प्राथमिक कर्तव्य है, मूलभूत कर्तव्य है। तो हमारे अखिलात्मा हरि प्रभु और उनकी पत्नी भी ऐसा एक उदाहरण है। जब मैं उनकी कन्या को देख रहा था, वो कीर्तन कर रहे थे, ब्रजप्रिया, वो जो प्रयास था ना उसका हरिनाम लेने का, वो बहुत ही सराहनीय था, एफर्ट ऑफ चैंटिंग द होली नेम। शायद आगे जाकर वो उस राग में एक्सपर्ट हो जाएगी और बहुत अच्छा गाएगी, वो आगे की बातें हैं। लेकिन कितने बालकों को आप देखते हैं आज बताओ, कि जो वो कीर्तन करना चाहते हैं, जो गाना चाहते हैं, जो राग सीखना चाहते हैं, वो सिंसियरली गाना चाहते हैं, या गाना सीख गए तो वो चार भक्तों के बीच में भी गाने को जब आप बोलेंगे तो गाने को तैयार हैं, ऐसा होता है क्या? सब गाना वाना सीख रहे हैं लेकिन आप बोलेंगे अभी गाओ, नहीं गाऊंगा, मुझे नहीं गाना है। लेकिन चार वैष्णवों के बीच में बैठकर प्रयास करना हरिनाम का गाने का, बहुत सराहनीय बात है, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। डिजायर टू चैंट आज किसके किस घर में है बताओ, सब लोगों को केवल मजा ही करना है। तो माता पिताओं का जो सिंसियरिटी है वो अगर है वास्तव में, तो आपको बालक में वो दिखाई पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको उसका अनुभूति होगी निश्चित रूप से। आप सब लोग जानते नहीं होंगे, अखिलात मारी प्रभु की पत्नी जो है वो हम लोग उनके गांव गए थे धुलिया में, हाँ मैंने कभी उनका इतना फायर देखा नहीं था पहले बॉम्बे में, हाँ स्कूल में हम गए थे वहाँ पर, सब लोगों से कांटेक्ट करके उन्होंने हमारा प्रोग्राम रखा था उधर, वहाँ पर सारे प्रोफेसर, उनका भाई भी वहाँ प्रोफेसर है स्कूल में, सबका कांटेक्ट है, वो भगवद गीता बांटते हैं और क्या क्या, डैशिंग आई डोंट बिलीव दैट बिफोर। और अगला तो प्रभु, प्रभु का जो विशेषता क्या है उनकी, सिंप्लिसिटी ऑफ द हार्ट। सो जो भक्त जो होता है वो शायद, हर भक्त जो है वो शायद शास्त्र में निपुण नहीं होगा, और हर भक्त शायद प्रवचन में निपुण नहीं होगा, हर भक्त शायद पुस्तक वितरण में माहिर नहीं होगा, या हर भक्त शायद जन्माष्टमी कलश में माहिर नहीं होगा, या हर भक्त शायद डीडी वर्ष में माहिर नहीं होगा। लेकिन ये सब ना होते हुए अगर कोई भक्त सिंसियर है तो वो जरूर आगे महान बनेगा। आज ही सुबह मैंने महात्मा प्रभु का मायापुर का प्रवचन सुना भागवतम, वो कहते थे कि हम लोग इतने म्लेच्छ लोग हैं, परदेश के लोग, प्रभुपाद जी जानते थे ये सब कि हमारे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कुछ करने की क्षमता नहीं है, हर जगह में पतितता जी है वही दिखाई पड़ती है, ऐसा वो खुद बोल रहे हैं, मतलब मैं नहीं बोल रहा, वो खुद बोल रहे हैं कि हम इतने पतित थे कि हमारी पतितता जो थी वो सब जगह प्रकर्ष रूप से लोगों को दिखाई पड़ती थी, हर जगह पर हमारा फॉलन कंडीशन था वो सामने आता था लोगों के सामने। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी कहते थे कि ये सच है कि आप सब फॉलन हो, लेकिन आप लोगों का एक गुण है, आप लोग बहुत सिंसियर हो, वेरी सिंसियर, और आपके अंदर और भी एक गुण है, वो बाकी संप्रदाय के आचार्यों को बताते थे कि इनके अंदर एक गुण है, ये पतित है निश्चित रूप से, लेकिन इनके अंदर एक गुण है कि मैं जो कहे कहूंगा वो करने को वो हमेशा तैयार रहते हैं, वट एवर आई से दे विल डू इट, एंड दैट इज देयर क्वालिफिकेशन, दे आर अटैच्ड टू मी एंड दैट इज देयर ओनली क्वालिफिकेशन। तो वैसे ही हम लोग के अंदर कोई गुण नहीं हो सकते, अगर हम प्रामाणिकता अगर हमारे अंदर होगी ना, ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी, तो सारे दुर्गुणों पर मात करके हम भगवान के दरवाजे पर खटखटा सकते हैं, कैन नॉक द डोर ऑफ द लॉर्ड, द ओनली डिंट ऑफ सिंसियरिटी एंड ह्यूमिलिटी। तो इसलिए इस्कॉन के अंदर ऐसे कई भक्त हैं जिनका कहीं भी कभी नाम नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो उन्होंने शरीर त्याग दिया तब उनका चरित्र पूरा प्रकाशित हो गया सब जगह पे। तब उनका जब शरीर छोड़ने का समय आया तब उनकी सारी जो सिंसियरिटी थी वो प्रकट हो गई सबके सामने, कि ना कोई बड़े प्रचारक थे, ना कोई गुरु थे, ना कोई बड़े ऐसे हस्ती थे इस्कॉन के अंदर। तो प्रभुपाद जी की संस्था में ये दिखाया गया, दिख पड़ा कि हर समय पर कोई प्राकृतिक रूप से, लौकिक रूप से कोई दिव्य गुण होना चाहिए ऐसा जरूर नहीं है, हृदय में सिंसियरिटी होगी, सादगी होगी, तो भगवत धाम में जा सकते हैं। और गुरुदेव भी हमारे अगरनाथ महाराज जी यही कहते हैं कि गोपियों के अंदर, ब्रजवासियों के अंदर सबसे कौन सा ऐसा गुण था जो कृष्ण को पसंद था, बोले उनके हृदय की सादगी, द सिंप्लिसिटी ऑफ द हार्ट, नो डुप्लिसिटी, अंदर बाहर कोई अलग नहीं, जो अंदर है वो बाहर है, बाहर है वो अंदर है। ये जो गुण है ना ये आसानी से प्राप्त नहीं होता है, उसको बहुत समय लगता है, क्योंकि हमारा नेचर ऐसा है डुप्लिसिटस, उसको सादगी में परिवर्तित करने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। तो प्रामाणिकता जब भक्तों के अंदर आती है तो भगवान को बड़े प्रिय हो जाते हैं, उसके बाद में फिर सारे दुर्गुण धीरे धीरे नष्ट हो जाते उसके प्रभाव से। तो हम सब लोग अखिलात्मा हरि प्रभु, उनके पति का नाम क्या, सर्व करुणामयी, सर्व करुणामयी देवीदासी ब्रज प्रिया, 14 साल के बाद में उनको कन्या रत्न प्राप्त हुआ, और सुंदरता से वही भक्त की कली खिल रही है। तो हम सब लोग उनके लिए शुभेच्छा व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हम सब लोग उनको अपने हृदय की शुद्ध इच्छा व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गृहस्थ जीवन का जो परिपूर्णता है वो उनको प्राप्त हो जाए और गृहस्थ आश्रम कोई निम्न आश्रम नहीं है। हम गृहस्थ आश्रम में रह के सन्यासियों का, ब्रह्मचारियों का, वानप्रस्थियों का बहुत आदर करते हैं, वो हमारे लिए बहुत स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ सन्यासी, वो गृहस्थों का आदर करते हैं, तो वही हेल्दी रिलेशनशिप है। एक ज़माना था वैसे सोचते थे कि ब्रह्मचारी मतलब जो सब जगह फेल हो जाता है वो ब्रह्मचारी बन जाता है एकदम नाकाम रहता है सब जगह, वो एकदम यूजलेस होता है ना, उसमें ब्रह्मचारी बन जाता है, ऐसे एक ज़माने में भावनाएं थी। और ब्रह्मचारी सोचते थे ये सब भोगी लोग जो है ना, ये सब गृहस्थ लोग, कुछ बेकार लोग, जिंदगी में कामुक लोग जो भोगवादी हैं, सब वो शादी करके बैठे हुए, ऐसे उनको नीचा देखते थे। तो महाराज जी को मैंने देखा हुआ है गृहस्थों को, ब्रह्मचारियों को डांटते हुए इन भावनाओं के लिए, बहुत प्रयास पूर्वक उन्होंने फिर ब्रह्मचारियों में आदर प्रस्थापित किया कि देखो इतना परिवार, बालक, बच्चे, जॉब वॉब सब होते हुए भी इतने अच्छे भक्त हैं गृहस्थ लोग, डोनेशन भी ऊपर देते हैं, हमारे लोगों को संभालने के लिए भी डोनेशन देते, ऐसा ब्रह्मचारी सोच रहे हैं। और गृहस्थ का सोच रहे हैं देखो कितने विरक्त लोग हैं, हम लोग पति पत्नी बालक पैसा धन संपत्ति रख के कैसा भक्ति कर रहे हैं, हमारा तो भक्ति में कोई मतलब ही नहीं, सब ध्यान हमारा भोग में है, ये देखो कितने विरक्त लोग हैं, सब दुनिया संसार का जो भोग छोड़कर ब्रह्मचारी बने। तो वो उनको आदर करने लगे, ये इनको आदर करने लगे। तो वास्तविक रूप में चारों आश्रम जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए परिपूर्ण है। चारों आश्रम में कोई ऊंचा नीचा आश्रम नहीं है, लेकिन चारों आश्रम में एक नेचुरल भावना ऐसी होती है कि हर आश्रम दूसरे आश्रम को श्रेष्ठ समझता है। ये एक नेचुरल कृष्ण कॉन्शियस भावना है। जो ब्रह्मचारी आश्रम है वो वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी तीनों को आदर करता है। जो गृहस्थ है वो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी को आदर करता है। सन्यासी है वो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थों को आदर करता है। हर समय सोचता है कि ये तीनों कितने महान है, मैं तो ये ऐसे ही सब अकेला हूँ, मेरे को क्या चैलेंज है, अरे अकेले को संभालना है। ये गृहस्थों को देखो, वो पति पत्नी माता पिता जॉब सब परिवार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सबको संभाल के हुए अपनी भक्ति को आगे बढ़ रहा है। ये सन्यासी सोच रहा है, गृहस्थ सोच रहा है कि देखो मैं कितना पतित हूँ, सन्यासी महाराज सब कुछ छोड़ कर अपना भगवान की सेवा में लगे हुए, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप में चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, भगवान कहते हैं मैंने ही खुद बनाया है और इसका हर एक आश्रम परिपूर्ण है। किसी भी आश्रम में आप अपने आप को फिट करते हो प्रामाणिकता से, तो वो आश्रम आपको भगवान के धाम में पहुंचा सकता है। तो हमारे लिए गृहस्थ आश्रम है क्योंकि हम लोगों को भौतिक इच्छाएं थी, अभी भी है, लेकिन अगर हम प्रामाणिकता से भगवान की सेवा में लगेंगे, जैसे ठाकुर भक्ति विनोद जी थे, वो कहते थे जब मैं घर आता हूँ मेरे ऑफिस से, देखता हूँ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भगवान के विग्रह की सेवा में लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ग्रह गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर रहा हूँ। मैं मेरे नौकरी से आ रहा हूँ कलकत्ता कोर्ट से, वो क्या कृष्णानगर के कोर्ट से आ रहा हूँ गोद्रूम में, रेलवे से उतर रहा हूँ, एक पैसेंजर का रेलवे है ना, जिसमें उतरता हूँ, घर में आता हूँ, जूता निकाल के अंदर देख प्रवेश कर रहा हूँ, शायद सूट बूट में आते हैं ना, सूट बूट में हैट पहन के आते, जूता निकाल देख रहे हैं क्या, गृहेते गोलोक के भाई, घर में सब लोग मेरे बालक बच्चे माँ सब लोग पत्नी ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं, तो घर ही मेरा गोलोक है। ये भावना सब लोगों को हमारे मिलनी चाहिए, हमारा गृहस्थी जो है वैसे गोलोक जैसे होनी चाहिए, भगवान प्रधान स्थान में है, केंद्र स्थान में है, ठाकुर जी स्वामी है घर के, नाम शायद कोर्ट में तुम्हारा होगा लेकिन हृदय में आपका स्वामी घर के ठाकुर जी हैं, उनके लिए ही आप कष्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उनके लिए ही सारी सेवा हो रही है, उनके लिए ही सारा प्रपंच हो रहा है, सब बच्चे उनके, सब पत्नी उनकी है, उनकी हम सेवा कर रहे हैं, ये भावना से हम रहेंगे तो हमारा घर भी गोलोक ही है। और ऐसे गोलोक में आप रहते होंगे तो उसके बाद भी गोलोक ही जाएंगे, इतनी नेक प्रैक्टिस किया आपने इधर, तो जाना किधर है आपको, जाना उधर ही, तो ये हमारा परम भाग्य है। हमको प्रभुपाद जी ने गृहस्थी में रहते हुए अपनी सारी थोड़ी बहुत इच्छाओं को पूर्ति करते हुए ऐसा सुंदर मौका दिया है, कोई बात नहीं, यू बी अ गृहस्थ, यू अर्न मनी, यू बिकम रिच, नो प्रॉब्लम, स्वामी भगवान को बनाओ घर में अपने, उनकी सेवा करो, बच्चों को कृष्ण भावना दो, बच्चों को वैष्णवों की सेवा करने की आदत लगाओ, अपना धन जो है वो खुद का इस्तेमाल होने के बाद में जो है वो भगवान की सेवा में लगाओ, उन्हीं उसी भावना से उसको कमाओ, उसी भावना से उसको खर्च करो, प्रधानता कृष्ण भावना के दो। तो हमारे लिए भगवान दूर नहीं है, केवल हमारी भावना किधर है, चेतना किधर है, केंद्र स्थान में कौन है, हम है कि भगवान है, यही प्रश्न है। और हम केंद्र स्थान में उनको हमेशा देखते हैं स्वामी के रूप में, तो भगवत धाम हमसे दूर नहीं है, हम भगवत धाम में ही है। हमारा ग्रह ग्रह जो है, हमारा घर जो है, वही गौलोक है, बन जाता है अपने आप। ये सब गुरु जी की कृपा है। तो अपने आप में हम लोग तो केवल भोगवादी है, हम लोग केवल भोग ही देखते रहते हैं, मुझे क्या मिलेगा। गुरु जी और प्रभुपाद जी महाराज इतने कृपालु हैं कि उनके वजह से हम जैसा का घर भी गोलोक बन सकता है, ये हमारी परंपरा है। और इतनी कृपा से जो सबसे कठिन आश्रम बड़ा आसान बन जाता है, जब सब भक्त होते हैं घर में, पति भक्त है, पत्नी भक्त है, बच्चे भगवान का भजन कर रहे हैं, सब मिलकर वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, सब मिलकर केवल भक्तिपूर्ण कार्य करते हैं, यात्रा में जाते हैं, भगवान को हर स्थान में हर जगह पे केंद्र स्थान में रखते हुए अपना काम करते रहते हैं। नेपाल में भी गए, भूकंप में भी भगवान को बीच में रखे हम लोग, लोगों की सेवा करते थे, भगवान की करुणा को लोगों को देने का प्रयास करते थे, चाहे वो समाज कार्य हो, चाहे गृहस्थी कार्य हो, चाहे कुछ भी कार्य हो, हर कार्य को हमको भगवान को केंद्र स्थान में सोच कर ही उनके लिए ही करना है। तो हमारा घर का और घर के बाहर का जीवन जो है वो गोलोक ही गोलोक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।